उल्लेख करते हुए बोलते हैं, पापमेवाश्रये तस्मा हत्वैतानातता तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन स्याम माधव। पापम एवाश्रयेत अस्मात्, आश्रयेत, आश्रयेत का अर्थ है आश्रय लेना। तो अर्जुन यहां पर बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, इनको मारने से हम पाप का आश्रय ले रहे हैं। केवल पाप कर नहीं रहे, पाप का आश्रय ले रहे हैं। तो बहुत विशेष शब्द अर्जुन इस्तेमाल कर रहे हैं पाप के संदर्भ में, और कहते हैं कि ये आतताई है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि आतताई किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि ये मेरे स्वजन, मेरे बंधु, और भगवान को माधव इस नाम से पुकार रहे हैं। तो श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, पापम आतताइनः धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम् सुखिनः स्याम माधव। अब देखिए, अर्जुन कहते हैं कि ये पाप है, परंतु पाप किसे मारने के लिए? अपने स्वजन, अपने बंधु को मारना ये पाप है। केवल पाप नहीं, पाप का आश्रय लेना है। परंतु उसके साथ साथ उन्हें आतताई भी बोल रहे हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार आतताई को मारना कोई पाप नहीं। और कौन आतताई है इसकी परिभाषा भी शास्त्रों में बताई गई, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे कौरव पूर्ण रूपेण योग्य थे अर्जुन के हाथों मरने के। बिल्कुल पाप नहीं लगता अर्जुन को, आतताई, अर्जुन जानते हैं कि आतताई है। और फिर भगवान को कहते हैं कि कैसे हम सुखी रहेंगे और आपका नाम है माधव। तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल जो अर्जुन किए हैं, इसे हम एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले, पाप दो प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल दो ही नंबर दो ही है, नहीं, प्रकार दो है, अनगिनत। कलयुग में तो अनगिनत उसमें लिस्ट आ जाएगा कि कितने अनगिनत पाप होते हैं कलयुग में। सबसे पहले अनअधिकृत और दूसरा अधिकृत। अनअधिकृत का अर्थ क्या है? अनऑथराइज्ड। तो कोई पूछे, ऑथराइज्ड पाप भी होता है क्या? जैसे कि अनअधिकृत ताड़ीमाड़ी केंद्र और अधिकृत सरकार मान्य ताड़ीमाड़ी केंद्र है, नासिक में है, बहुत जगह लिखा होता है सरकार मान्य है ये। तो अब कैसे समझा जाए कि कौन सा पाप अधिकृत है, कौन सा पाप अनअधिकृत, कैसे समझा जाए? हाँ, कोई व्यक्ति किसी पाप कर्म में लगा है तो उस पाप कर्म को देखते हुए कैसे आप निर्णय पर आओगे कि ये अधिकृत है या अनअधिकृत? हाँ, समाज के लिए जो भला है वो अधिकृत है, और जो समाज के लिए भला नहीं है वो अनअधिकृत। ठीक है, अब एक उदाहरण हम लेते हैं कि नासिक में एक वाइनरी है, वाइनरी जानते हैं, तो जहां पर दारू बनता है, और वहां पर वो वाइनरी बंद कर दी किसी ने, तो ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा है? हाँ, अच्छा है। लेकिन फिर कोई कहेगा इतने लोग जो उसमें काम करते हैं वो बेरोजगार हो गए, तो आपने उनकी भलाई की कि उनकी बुराई हो गई, तो फिर पाप हुआ। वो वाइनरी बंद करना पाप हुआ। अब यही प्रश्न, वाइनरी को चालू रखना क्या वो पाप है या उस वाइनरी को बंद करना पाप? अच्छा, तो मतलब बंद करने से भलाई हो रही है समाज में। हाँ, ये अच्छा मुद्दा है कि कितने लोग, 400 500 कितने लोग उसमें काम करते होंगे, लेकिन जो उत्पादन होता है दारू का, कितने लोग उसे पीकर अपने आप की बुराई कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस मुद्दे को यदि लें तो समाज की भलाई हो रही है। अब ये किस पर आधारित है? ये अधिकृत, ये बंद करना, उसे अधिकृत तरीके से बंद करना, ये किस पर आधारित है? हाँ, तो मान लो कि सरकार ने उस इफेक्ट को देखकर बंद किया, जैसे कि बहुत से पाश्चात्य देशों में पब्लिक स्मोकिंग मना है, पब्लिक में स्मोकिंग कोई नहीं कर सकता। लंदन में भी ये नियम बनाया गया था, अब पता नहीं आजकल लागू है कि नहीं, परंतु मैं जब था पिछले साल तो ये नियम निकाला था कि कोई भी पब्लिक में स्मोकिंग नहीं करेगा। तो ये अधिकृत, अर्थात क्या सरकार ये बोल रही है कि आप प्राइवेट में स्मोकिंग करो? यदि सरकार ने कहा पब्लिक में स्मोकिंग नहीं कर, धूम्रपान निषेध, तो कोई कहे ठीक है, तो सरकार ने इसके साथ साथ ये कह दिया बिना कहे कि प्राइवेट में जितना पीना है पियो। नहीं नहीं, क्या सरकार ने उसके साथ साथ ये कहा? परंतु ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पब्लिक में न पिए तो प्राइवेट में पी, तो इसलिए हमें अपने मन से हम जो नियम बांध लेते हैं उसे अधिकृत नियम नहीं कहेंगे। या पाप भी, पुण्य तो दूर की बात है, पाप भी यदि अधिकृत तरीके से किया जाए तो उसमें कोई परिणाम नहीं आता, और इसलिए उसे समझने के लिए शास्त्र, जैसे सरकार मान्य वैसे हम कहेंगे शास्त्र मान्य पाप। अच्छा, अब हम पूछेंगे कि शास्त्र मान्य कौन से ऐसे पाप हैं जो शास्त्र के अनुसार शास्त्र ने मान्यता दी है, परंतु यदि वो शास्त्रों अनुसार नहीं किया जाए तो वो बहुत ही गहन पाप है। कोई उदाहरण? हाँ, भगवान को भोग बनाते समय अग्नि जलाना, तो क्या होता है अग्नि जलाने से? हाँ, अग्नि जलाने से जीवाणु कीटाणु बहुत मरते हैं। ये बताया गया है कि गृहस्थ जीवन में ये क्या पंचशून पांच प्रकार के पाप हैं, साफ सफाई करते समय, मसाले पीसते समय, फिर पानी निकालते समय, खाना बनाते समय, अलग अलग प्रकार से इतने जीवाणु मरते हैं इसमें। तो इसलिए देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि यदि जो भी कुछ पक रहा है अग्नि के द्वारा वो यदि भगवान को भोग नहीं चढ़ता तो वो क्या है? पाप। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु जी ने बोला, प्रभु जी भी नहीं बोल रहे, शास्त्र बोल रहे। तो इसलिए कहा गया है, साफ साफ भगवत गीता में कहा गया है कि जो यज्ञ शिष्टाश्न संत है, कि जो यज्ञ में अर्पित नहीं होता, जो भोग नहीं चढ़ता, वो केवल पाप है। तो यहां पर उसे बनाने के लिए हत्या हो रही है, परंतु अंततः जब भगवान को भोग चढ़ता है तो उसमें जितना भी कुछ गया हो पाप कर्म, वो सारा पाप कर्म शून्य निल हो जाता है। बल्कि जब भगवान को भोग चढ़ता है तो वो भक्ति पाप कर्म से, पुण्य कर्म से भी ऊपर अकर्म में पहुंच जाता है, उस श्रेणी में। मांसाहार, इसके विषय में बताया गया है कि जैसे मांसाहार भी, ये तो जानबूझकर किसी जानवर की हत्या की जा रही। अग्नि जलाते समय तो हमें पता नहीं कितने हमारे अनजाने में मर रहे हैं कितने कीटाणु, परंतु जो मांसाहार करते हैं वो जानबूझकर किसी जीव की हत्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि ये जो जीव है इसके अंदर चेतना नहीं है। कौन बोल सकता है कि जब उन्हें मारा जाता है, जैसे पाश्चात्य देश में जो कसाई खाने होते हैं, इन कसाई खानों में जो कसाई मारते हैं जानवरों को, उन्हें सबको विशेष रूप से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना होता है। जो ये कसाई काम करते हैं, इतने बड़ी मात्रा में जानवरों को मारा जाता है, क्यों लेना पड़ता है ये साइकेट्रिक ट्रीटमेंट? क्योंकि जानवरों की पीड़ा को देख देख कर उनके अंदर एक अजीब प्रकार का पागलपन छाता है। और ये ऐसे कसाई खाने हैं जिनके अंदर इन कसाइयों को अपने कानों में वो ईयर प्रोटेक्शन डालना पड़ता है, क्योंकि ये जानवर इतने जोर से चीखते हैं। अब कल्पना कीजिए जब किसी का गला छुरी से काटा जाए और रक्त बह रहा है, अब अधमरे अवस्था में वो ऊपर लटका हुआ है जीव, वो जानवर, तो कितना चीखता चिल्लाता है। और यदि हम इतना तो वर्णन नहीं कर सकते, मंदिर में कई कसाई उनको वहीं पर उल्टी भी होती है क्योंकि वो देख नहीं पाते। तो यहां पर जानते बूझते हुए किसके लिए? इस जीवहा की संतुष्टि के लिए। परंतु उसमें भी शास्त्र ने बताया है कि ये क्रिया भी यदि शास्त्रों अनुसार की जाए तो उसमें उस जानवर का भला हो सकता है। कैसे? कलयुग में बिल्कुल नहीं है ये, अधिकृत कलयुग में बिल्कुल नहीं है। पिछले युगों में जो मांसाहार बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे, उनके लिए ये नियम बताया गया था। सबसे पहले तो जो खाएगा वो काटेगा, और वो भी उस जानवर की आंखों में देखते हुए कि देखो उसे कितनी पीड़ा तुम दे रहे हो। इसलिए उसको कहते हैं मांस, कि मैं अभी तुम्हें काट के खा रहा हूं, अगले जन्म में मैं तुम्हें लाइसेंस देता हूं कि तुम मुझे काट के खाओ। ये मंत्र, ये एक मंत्र मांस बोलते हुए उस जानवर को उसे मारना होता था। ऐसा नहीं कि मार्केट में जाके खरीद लिया, नहीं, वो जो खाएगा उसे वही काटेगा, और वो भी अमावस्या की रात को, और ऐसी जगह पर जहां पर समाज के कोई ज्यादा लोग न हो, एकांत में, वीराने में। और ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, शुद्ध ब्राह्मणों को वहां पर बुलाया जाता था। तो ये ब्राह्मण शुद्ध मंत्रोच्चारण करते जब उस जीव को मारा जाता, उस जानवर को, तो शुद्ध मंत्रोच्चारण करने के वजह से उसका जो आत्मा तुरंत मनुष्य देह प्राप्त, तो वो उस जानवर के लिए अच्छा था। तो और भी बहुत से उसके नियम, तो ये शास्त्र अनुसार। अब देखिए इसमें है, ये एक नृशंस पाप इस जानवर को इस नृशंस तरीके से मारना, परंतु क्योंकि उसे अधिकृत तरीके से किया जाए तो हुआ क्या कि अब ये सारे ब्राह्मण जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, इन्हें लगा कि ये इतना काट के लोग खाते हैं, थोड़ा मैं भी टेस्ट करूं कैसा लगता है। तो वो ब्राह्मण पतित हुए, वो मांसाहार करने लगे और फिर वो शास्त्र के आधार पर अधिकृत पाप को अनअधिकृत तरीके से करने लगे और तब फिर भगवान बुद्ध को अवतार लेना पड़ा और इन सब के ऊपर शोषण करके रोकना पड़ा। तो अब क्या इतना काफी है कह देना कि जो कुछ शास्त्र में लिखा है वो अधिकृत है, यदि पाप भी हो वो बाहरी दृष्टिकोण से, क्या इतना काफी है? आपकी क्या राय है? मान लीजिए कि कोई शास्त्र को लेकर आए और सामने हमको दिखाए कि देखो ये शास्त्र में, इस उपनिषद में, इस पुराण में लिखा गया है कि हम मांस खा सकते हैं, लेकिन वो शास्त्र बोल रहा है, बोले आपके ही शास्त्र में, भगवान की वाणी, भगवत तू साक्षात भगवत प्रणीतम, हाँ क्या इतना काफी है? शास्त्र को देश काल पात्र वस्तु स्थिति इसके अनुसार समझना होगा। केवल शास्त्र को कोट कर देना कि शास्त्र में लिखा गया है, परंतु बिना देश को देखते हुए, बिना काल, बिना पात्र वस्तु स्थिति को देखते हुए, जैसे कि एक भौतिक उदाहरण हम लेते हैं कि एक सैनिक है, आर्मी का सैनिक है और वो लड़ रहा है, शत्रु से लड़ रहा है और बॉर्डर पर वो अकेला 1000 शत्रु को मारता है, परास्त कर देता है, तो उसे मेडल मिलता है, परमवीर चक्र। तो वो सोचता है मैंने 1000 व्यक्तियों को मारा और मुझे परमवीर चक्र मिला। तो वो जब अपने देश में आता है फिर से युद्ध समाप्त होने के पश्चात, तो वो 2000 लोगों को मारता है, क्या सोचते हुए कि डबल मिलेगा। क्या कहना है आपका? लेकिन वो तो कोट करेगा, भाई यही बंदूक, यही गोली और मैंने अब 2000 लोगों को मारा, तो गलत क्यों? क्योंकि वो स्थिति अलग थी और वहां पर उसे वो अधिकार दिया था उसके कमांडर ने, हमारे कर्नल साहब हैं यहां पर पूछ सकते हैं, तो कमांडर ने आदेश दिया था कि अब चलाओ गोली। तो उस देश स्थिति काल के अनुसार उसे इनाम मिला मारने का, किसी को मारने का इनाम मिला और वही क्रिया किसी दूसरी स्थिति में, किसी दूसरे काल में, दूसरे देश में यदि वो करे तो फिर उसमें दंड मिलता है उस व्यक्ति को। जैसे कि भारत में ये सब ट्रकों के पीछे लिखा जाता है ब्लो हॉर्न, और पाश्चात्य देश में अगर आप इस प्रकार से हॉर्न बजाओ तो दंडित करते हैं आप वहां पर। वहां पर कुछ एक समय है, केवल उस समय में व्यक्ति हॉर्न बजा सकता है, और यहां पर जोर जोर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है बजाते रहो। तो कितने सारे नियम हैं ऐसे जो देश काल पात्र वस्तु स्थिति के अनुसार उसमें हमें समझना होगा कि कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। कि यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि पुण्य कार्य भी पाप में परिणित हो सकता है यदि सही देश काल पात्र स्थिति वस्तु के अनुसार नहीं किया जाए। इस हद तक यहां पे हमें समझना होगा कि तथा कथित जो पुण्य है वो भी पाप में परिणित हो सकता है। तो ये पाप के दो प्रकार अब समझ में आए कि केवल हमें शास्त्र कोट नहीं करना है। जैसे कई लोग, कई धर्म के अपने शास्त्र कोट करते हैं कि यदि हम काफिरों को मारेंगे तो हम जन्नत पाएंगे, और वो अपने शास्त्रों को कोट करते हैं, परंतु बिना देश काल स्थिति वस्तु इसके इसे छोड़कर। अच्छा, अब मनुष्य के लिए विशेष रूप से हम यदि देखें तो दो प्रकार के कार्य बताए गए हैं, एक करने योग्य और दूसरा नहीं करने योग्य। दोनों बताए गए शास्त्रों में कि क्या करो और क्या मत करो। इसे क्या कहते हैं? यम नियम। यम का अर्थ क्या है? कि क्या न करो। नियम का अर्थ क्या करो। तो अब देखिए, यदि हम जैसे कई बार इस मुद्दे को लोग लेकर वाद विवाद करते हैं कि भाई यदि मैं माला जप न करूं, ये आपके मंदिर में न आऊं, लेकिन मैं सबका भला कर रहा हूं, तो क्या मुझे भगवान प्राप्त नहीं होंगे? तो क्या कहोगे आप? ओ क्या है, बी गुड डू गुड, कि खुद अच्छा रहो और दूसरों का अच्छा करो, दूसरों की भलाई। तो ये जो फिलॉसफी है, इसे आप कैसे अब ये दो मुद्दों के संदर्भ में समझोगे? हम जो मनुष्य देह में आए हैं, हम सब का एकमेव कर्तव्य हमें बताया गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां से जैसे ही हमें ये मनुष्य देह मिला है तो बताया गया है कि क्या करना है, और ये नहीं करने के वजह से उसका परिणाम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन का कार्य क्या है? लेटर या जो पत्र है उसे घर तक पहुंचाना। यदि वो अपना कार्य नहीं करता तो उसने कुछ नहीं किया। अब पाप कार्य क्या होता है? कुछ करना। जैसे कोई जाके दारू पीता है, कोई जाके मांस खाता है, कोई जाके किसी को मारता है, तो पाप कार्य यहां पर हम कैसे समझते हैं? कि वो अपने शक्ति को, शरीर को किसी पाप कार्य करने में लगा रहा है। अब यहां पर यदि इस डाके का उदाहरण लें तो इसने कुछ नहीं किया, तो क्या वो पाप की श्रेणी में आएगा? उसने पत्र नहीं डाला, आप क्या कहोगे, हां या ना? जो करने योग्य था उसे जो पद दिया गया है, उस पद के अनुसार उसे जो करना था उसने नहीं किया, अर्थात वो अब गुनहगार है। उसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं किया, और उसने यदि कुछ ठीक से बहाना या कारण नहीं दिए तो फिर दंडित किया जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे एक डाकिया का एक पद है, वैसे ही हम मनुष्यों का एक पद है कि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। हमें जो बुद्धि दी है प्रकृति ने, भगवत साक्षात्कार के लिए दी है। तो यदि भगवत साक्षात्कार हम नहीं करते तो प्रकृति पूछेगी क्यों नहीं किया। जैसे वो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन को पूछेगा क्यों नहीं दिया पत्र, और वो कहेगा नहीं देना मुझे, कर लो जो करना है, तो क्या होगा? अरे मैंने किसी को गाली थोड़ी दी, मैंने खाली लेटर तो नहीं दिया ना। तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? ठीक है, जाओ बैठो और अपने घर में अपने पत्र पढ़ते रहना। फिर ये पत्र पढ़ो, कौन सा पत्र? सस्पेंशन का, ले जाओ अपने घर। तो वैसे ही प्रकृति करती क्या है कि जब पूछती है कि तुम्हें मनुष्य देह दिया और उस मनुष्य देह का तुमने क्या किया, यदि ये सब जो कुछ करना था वो नहीं किया, तो जैसे वो पोस्टमैन का पोस्ट चला जाता है वैसे ही मनुष्य का पोस्ट भी प्रकृति लेके और किसी को दे देती है और फिर दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अब इसे भी यदि हम देखें क्या करने योग्य है नहीं करने योग्य, तो वो भी देश काल पात्र वस्तु स्थिति के अनुसार। जैसे हमारे शास्त्रों में एक कथा है, ऋषि कौशिक करके एक थे जिन्होंने प्रण लिया था सत्य वचन बोलने का। इन्होंने कभी अपने जीवन में असत्य वचन नहीं कहे थे। तो इनके आश्रम में हुआ क्या कि एक व्यक्ति चोरों से भागते हुए छिप गया। चोर इसके पीछे पड़े थे चोरी करने के लिए। तो जंगल में भागते भागते कौशिक ऋषि के आश्रम में छिप गया। अब कौशिक ऋषि जानते थे कि ये छिपा हुआ है मेरे आश्रम। तो चोर आए और चोर ने कौशिक ऋषि से पूछा कि यहां पर कोई आपके आश्रम में छिपा है भागते हुए। तो कौशिक ऋषि ने सोचा कि मैंने जो प्रण लिया कि मैं असत्य कभी नहीं बोलूंगा, तो उन्होंने सत्य बोला। हां वहां पर तो आप क्या कहोगे अब, क्या ये कार्य करने योग्य था या नहीं करने योग्य था? नहीं करने योग्य था। परंतु यदि कौशिक ऋषि आपसे आके पूछे तो क्या मैं असत्य बोलता? तो असत्य यदि मैं बोलता तो फिर वो पाप हो गया। तो देश काल स्थिति के अनुसार, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज की कथा है कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बोलो अश्वत्थामा मर गया, नरोवा कुंजरोवा। युधिष्ठिर महाराज नहीं बोल सके, वो असत्य। तो क्या बताया गया है, युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है जो जमीन पे नहीं टच होता था वो फिर टच हो गया। अब जैसे महाभारत को लेकर बहुत से वाद विवाद आ जाते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी खड़े हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे झूठ बोलने कहा युधिष्ठिर महाराज को, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को युद्ध के नियम के विरुद्ध मारा या मरवाया। परंतु यदि देश काल पात्र वस्तु स्थिति को देखें तो जो करने योग्य था वो भगवान ने करवाया, जो नहीं करने योग्य था भगवान ने मना किया। जैसे कि अब नहीं करने योग्य या करने योग्य बात को यदि हम लें तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सब को रणभूमि में मरना पड़ा, क्योंकि जब असत सभा में द्रौपदी का चीरहरण, वस्त्र हरण, दुशासन कर रहा था तो इन्होंने जो करना चाहिए था नहीं किया। क्या करना चाहिए था? विरोध कर रोकना चाहिए था और इन्होंने वो नहीं किया। तो अब देखो, पाप किया दुशासन ने परंतु दंड मिला भीष्म, द्रोण, इन सबको। इसमें क्या समझ में आता है कि मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व कितना गहरा है। अच्छा, अब यह प्रश्न पूछा जाए कि वहां पर युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, उन्होंने वो तो उनकी पत्नी थी, तो मानो द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह भगवान से पूछे कि भाई हमसे ज्यादा तो उनका उत्तरदायित्व था ना, वो तो पति थे, तो वो क्यों नहीं रोके? और यदि उन्होंने नहीं रोका तो फिर आप हमें ही क्यों मार रहे, उन्हें भी मारो। तो आप क्या कहोगे? ऐसा कृष्ण को कि युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि को क्यों नहीं मारा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य को इसलिए मारा क्योंकि वो असत सभा में चुप रहे, प्रतिरोध नहीं किया, तो इन्होंने भी नहीं किया, तो ये भी उतने ही भागीदार हैं पाप के। तो क्या कहोगे? हाँ हाँ अच्छा, तो जो भगवान के भक्त हो गए वो कोई भी पाप करे तो भीष्म पितामह वो नहीं भक्त थे क्या? वो भी भक्त थे। पांडव उस समय गुलाम बन चुके थे, उन्होंने अपने आप को दांव पे लगा दिया था। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, अपने आप को दांव पे लगा दिया तो द्रौपदी को कैसे लगाया? वो द्रौपदी ने खुद ने प्रश्न पूछा था कि युधिष्ठिर खुद को दांव पे लगाए हैं, पहले किसको दांव पे लगाया? खुद को लगाया, तो खुद हार चुके तो हमें कैसे मुझे कैसे लगाया दांव? भगवान श्री कृष्ण कहे कि मैं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम इन सबको मारने वाला था, भीष्म इनसे पहले मैं इन सबको मारने वाला था। भगवान ने क्यों इनको नहीं मारा? क्योंकि द्रौपदी विधवा हो जाती है। तो द्रौपदी की रक्षा करने के लिए मैंने इनको नहीं मारा, क्योंकि उस पत्नी की रक्षा केवल ये पति ही आगे चलकर करने वाले थे। तो भगवान ने यहां पर भेदभाव नहीं किया, केवल द्रौपदी की रक्षा करने हेतु पांडवों को मारा नहीं। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि वो पांडव और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब भागीदार समान रूप से उस पाप के, केवल चुप रहे। तो सोचिए कि यदि केवल चुप रहने से इतना बड़ा दंड मिल सकता है तो दुशासन दुर्योधन की क्या हालत हुई जिन्होंने ये उस युग में, जहां पर आज भी इस प्रकार का कार्य नहीं देखा जाता इतना, परंतु उस आजकल तो खैर जरूरत ही नहीं दुशासन को कुछ करने की। तो करने योग्य, नहीं करने योग्य, तो ये दोनों, ये नहीं करने योग्य जो बातें हैं इसमें यह समझना चाहिए कि जो करने योग्य बातें हैं यदि वो नहीं करें तो उसमें पाप है। अच्छा, अब भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार ये ध्यान से आप सुनिएगा कि पाप की उत्पत्ति कहां से होती है। सबसे पहले पाप की उत्पत्ति होती है अविद्या से। अविद्या से पाप का बीज बनता है। यदि हम ये कहें कि ये पाप की फैक्ट्री के अंदर बीज कहां से बनते हैं तो अविद्या से। तो सबसे पहले अविद्याम तथा पापम बीजम, कि बीज पाप का किसी के मन में उत्पन्न होता है। अच्छा, बीज के बाद पाप, फिर ये अप्रारब्ध। अप्रारब्ध कोई जानता है इस शब्द को? प्रारब्ध तो हमने सुना है कि मेरे प्रारब्धों के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अप्रारब्ध का अर्थ है कि वो पाप कार्य जिनके परिणाम अभी तक फलीभूत नहीं हुए, डॉर्मेंट या अनमैनिफेस्ट अव्यक्त स्टेट में जो है, जो पाप के परिणाम। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने एक साल में 1 करोड़ पाप किए, तो 1 करोड़ पाप का जो परिणाम है उसे धीरे धीरे तो मिलेगा ना, तो उसके अगले साल में शुरू होता है परिणाम का सिलसिला। तो अब वो अगले साल में कोई पाप नहीं कर रहा, परंतु जो कुछ संचित है वो सब अप्रारब्ध, वो सब रिकॉर्ड में आ चुका है। जैसे कि कोई व्यक्ति जब किसी होटल में जाता है खाने के लिए तो वो क्या है, खा रहा है, वो अपने कुछ कर्म में लगा है और उसके साथ अप्रारब्ध तरीके से उसका बिल बन रहा है। जितना वो ऑर्डर करता है उतना अप्रारब्ध तरीके से बिल, अभी बिल सामने नहीं आया, तो बिल सामने कब आता है? प्रारब्ध, और वो फिर दुख, फिर बाद में मन में दुख होता है, इतना नहीं खाना चाहिए था, ₹500 बिल हो गया। तो अब वो ये कह सकता है कि भाई मुझे तो मालूम नहीं था इसका इतना रेट है, आपको बताना चाहिए था। यदि वो मैनेजर को जाके कहे ना ये जो आपने दिया क्या मिसल पाओ ये इतना महंगा मुझे बताया नहीं आपने पहले, तो वो क्या कहेगा? हाँ वो पढ़ना चाहिए था आप आपको। तो यदि वो कहे कि ठीक है मैं पढ़ा उसे लेकिन मैं पैसे लाने भूल गया, मैं क्या करूं? अरे वाह, तो पैसे लाने भूल गया तो वो पहले पता होना चाहिए था कि तब जब तुम होटल में आ रहे हो तो जेब पेट खाली है लेकिन जेब खाली नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये हम सब का कर्तव्य है। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैंने पाप किया अविद्या में तो फिर सब कुछ माफ हो जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ज्ञान नहीं था कि यहां पे पैसा भी भरना पड़ता है, खाने के बाद पैसा भी भरना पड़ता है। नहीं, आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब ये हमने इसकी जो श्रृंखला है ये समझ ली। ये समझ में आया आपको कि अविद्या के वजह से पाप का बीज उत्पन्न होता है, फिर व्यक्ति पाप करता है, पाप ये जो पापम है ये पाप की क्रिया कर रहा है, बीज के स्तर पर अभी तक पाप किया नहीं है, अब तक अंदर इच्छा है पाप करने की लेकिन अब तक पाप नहीं किया उस व्यक्ति ने, वो कार्यशील अवस्था में नहीं आया है। और विशेष रूप से कलयुग में, क्योंकि कलयुग में ये बहुत ही सु अवसर हमें मिला हुआ है, सुनहरा अवसर है कि कलयुग में मन के द्वारा पाप जो भी किया जाए उसकी कोई गिनती नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फिर करते रहो मन में पाप, परंतु जो कोई शारीरिक रूप से कर्मों में उस पाप को करता है तब जाकर उसके परिणाम मिलते हैं। और इसके विपरीत यदि कोई शारीरिक रूप से भक्ति भगवान की न भी कर सके परंतु मन में भक्ति कर ले तो उसका परिणाम मिलता है। तो देखिए ये डबल ऑफर कलयुग में हमें मिला हुआ है। तो बीज की स्थिति में अब केवल पाप करने की प्रवृत्ति है, अभी तक पाप नहीं हुआ है। पापम का अर्थ है पाप कर लिया, उसके पश्चात तुरंत परिणाम या उसका रिएक्शन नहीं मिलता, अप्रारब्ध अप्रारब्ध की कैटेगरी में वो चला जाता है। और फिर फलोन्मुख, जैसे कि बीज रोपा जाता है धरती में तो तुरंत अंगूर तो नहीं मिलते ना, फिर धीरे धीरे पौधा, फिर उसके बाद में वो क्या वेल और उसमें से फिर फूल और फिर अंगूर। तो वैसे ही तुरंत वो फलोन्मुख नहीं होता, तुरंत वो प्रारब्ध स्थिति पे नहीं आता, परंतु प्रारब्ध स्थिति में आ गया इसका अर्थात ये पिछला जो भी कुछ है वो हो गया हमसे। अभी यदि हम दुख भोग रहे हैं तो ये सब कुछ हो गया। अब व्यक्ति ये सोचता है कि ठीक है मैं दुख भोग रहा हूं ना तो हो गया, वो कैंसल हो गया ना, पिछला जो भी पाप मैंने किया हो गया, दुख भोग लिया मैंने तो अब तो छुटकारा हो गया। हाँ हो गया छुटकारा? नहीं, इसके बीच में होता क्या है ये ध्यान से देखिए आप। ये एक कूटम करके भयानक व्यक्ति आ जाता है जो कि फिर से बीज पैदा करता है। ऐसा नहीं कि वो बीज उग के फल निकल गया, अब दुख भोग लिया, अब गया बीज। ये जो अप्रारब्ध, जब तक हमारे अंदर वो अप्रारब्ध अव्यक्त पाप का जो परिणाम अंदर है, वो परिणाम के वजह से कूटम, कूटम का अर्थ है गोडाउन। जैसे कि कोई किसान है, उसने गोदाम में बीज रखे हैं, तो वो गोदाम में बीज हैं, तो वहां पे अभी कोई पौधा नहीं उगने वाला गोदाम में। जब तक उस बीज को धरती में नहीं बोएगा, पानी नहीं डालेगा, उसका सिंचन नहीं करेगा, तब तक वो बीज फलोन्मुख नहीं होगा। तो वैसे हमने जितने सारे पाप कर्म किए हैं और अप्रारब्ध परिणाम अब तक हैं, वो एक एक करके गोदाम में और बीज भरते रहते हैं पाप के। थोड़ा मुश्किल जा रहा है, समझ रहा है? कोई प्रश्न है किसी का? ये सब हाँ पेंडिंग, हाँ पेंडिंग, हाँ सब सब परिणाम पेंडिंग है। और ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं यमराज, कि कोई व्यक्ति कहे मैं इतना पाप करूंगा कि यमराज भूल ही जाएंगे। तो याद ही नहीं रहेगा तो बाहर निकालो इसको, ऐसा नहीं। वो एक 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 इसके कितने सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। धृतराष्ट्र का ही उदाहरण, उसने 50 जन्म पहले कुछ पाप किया, उसका परिणाम उसे फिर धृतराष्ट्र की जन्म में मिला। तो ऐसे एक एक करके पाप का लेखा जोखा हमें सब देखना पड़ता है, दिखाते हैं उसका परिणाम। तो इसलिए भक्ति, अब यहां पर यह मुद्दा क्यों बताया गया है कि भक्ति जो है वो ये सब बीज कूट पाप अप्रारब्ध प्रारब्ध दुख सबसे निवारण कराती है। इसलिए छठे स्कंद में श्रीमद् भागवत के जब परीक्षित महाराज नरकों का विवरण सुनते हैं, पांचवें स्कंद में सुने हैं नरकों का विवरण, और फिर छठे स्कंद की शुरुआत होती है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि ये इतने पापी ऐसे ऐसे नरकों में यातना भुगतते हैं, तो क्या इनके बाहर निकलने का कोई साधन है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी अब भक्ति की महिमा बताने वाले हैं, परंतु उससे पहले कहते हैं कि हाँ कर्मकांड से कोई व्यक्ति केवल सकाम कर्म या पुण्य कर्म करने से व्यक्ति इन पाप कर्म से मुक्त हो सकता है, परंतु परीक्षित महाराज कहते नहीं, वो बीज नहीं गया अब तक। तो परीक्षित महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई अवांछित पौधा है, वो नहीं हमें चाहिए, तो हम यदि उसे काट दें तो अब वो अवांछित पौधा दिख नहीं रहा, वीड्स जिसे कहेंगे, वो अब दिख नहीं रहा। तो ठीक है, दिख नहीं रहा तो अब मुक्ति हो गई उस पौधे से? नहीं, उसका जो जड़ है अभी भी है। तो जैसे ही वर्षा आएगी या पानी या सूर्य प्रकाश पड़ेगा, फिर से वो पौधा उगेगा। तो उसी प्रकार से जब तक हृदय से जो बीज है पाप के, जब तक उसे हम निकाल कर नहीं फेंकते, जब तक उसे नहीं जलाते, तब तक ये बाकी जो है उससे छुटकारा नहीं। तो इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति निहारम इव भास्कर। बहुत सुंदर ये श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, केचित् केवलया भक्त्या, केवल भक्ति करने से ये सब बीज पाप अप्रारब्ध से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और उदाहरण देते हैं वो कि कैसी भक्ति, वासुदेव परायण, कि वो भक्ति जिसमें व्यक्ति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के परायण होता है। और उदाहरण दिया है निहारम इव भास्कर, निहार कहते हैं कोहरे को, कोहरा आप लोग जानते हैं, फॉग अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो फॉग होता है वो, उसका निवारण सूर्य उगने से पहले, जो ट्वाइलाइट जो टाइम होता है सूर्य उगने से पहले का जो समय, उसी में वो निहार मुक्त हो सकता है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विशेष रूप से वो भगवान नाम हरि नाम की महिमा कहते हुए परीक्षित महाराज को कहते हैं कि केवल शुद्ध नाम की भी जरूरत नहीं है, केवल नामाभास, केवल नाम के आभास से ये सारा जो कुछ है बीज पाप अप्रारब्ध ये सब से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल नाम के आभास से, इसलिए नाम की महिमा इतनी बताई गई कि हमें पता नहीं हमारे गोदाम में कितने बीज हैं पाप के। यदि हम केवल पुण्य कर्म में लगे रहें तो वो किस प्रकार से है, एक एक बीज को निकालकर उसे फेंकने की तरह। परंतु फिर भी वो नष्ट नहीं होने वाला बीज, कहां पर भी फेंको वहां पर तो उगने वाला है। तो केवल सकाम पुण्य कर्म करने से वो गोदाम के बीज नष्ट नहीं होने वाले, परंतु हरिनाम लेने से, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केवल उस हरिनाम के आभास से उस पूरे गोदाम को आग लगा सकता है व्यक्ति, और वो सारे बीज यदि जल जाएं उस भक्ति की अग्नि में, हरिनाम की अग्नि में, तब फिर वो बीज फिर से कभी फलोन्मुख नहीं होगा। और परीक्षित महाराज जब सुनते हैं इस केवला भक्ति के बारे में, वासुदेव परायण होकर भक्त बनने के बारे में, तो वो पूछते हैं कि क्या मैं इसके विषय में कुछ उदाहरण सुन सकता हूं। तब उदाहरण दिया जाता है अजामिल का। तो छठा स्कंद प्रारंभ इस प्रकार से होता है, और अजामिल जिसने इतने पाप किए कि अजामिल ने इतने पाप किए थे कि यमराज के ऑफिस में सब थक गए थे रिकॉर्ड करते करते, इतने पाप अजामिल ने किए थे, सारा हार्ड डिस्क भर गया था वहां का। और वो अजामिल जब उसने अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारते समय भगवान श्री नारायण का नाम लिया, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रो पचारितम अजामिलो प्यगात नाम किमुत श्रद्धया गृणन। बहुत ही सुंदर श्लोक है अजामिल के। इस कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, म्रियमाणो, मरते समय इस अजामिल ने, जो कि पापी था, अगात, इतना ज्यादा अघ इसने किया था, इतना पापी ये अजामिल, मरते समय इसने, ऐसा नहीं कि दिन भर ये पाप भी करता और माला भी करता, नहीं, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, केवल शुद्ध पाप करता ये और कुछ नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा अजामिल, ऐसा पापी, और मरते समय भी घृणन पुत्रो, अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा इसने, और इसका उद्धार कि विष्णुदूत आकर इसे बचाए व्यक्तिगत रूप से, कि मुत श्रद्धया घृणन, तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम ले। तो परीक्षित, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि श्रद्धा से कोई भगवान का नाम लेगा तो उसका क्या उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर अर्जुन भगवान को उस पाप के विषय में बोल रहे हैं जो कि धर्मशास्त्र के अनुसार बताया गया है, परंतु भक्ति के शास्त्रों के अनुसार वो जो अर्जुन छोड़कर रणभूमि से जाने वाले हैं वो एक पाप है, क्योंकि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करने वाले। अब अर्जुन आतताई के विषय में बोलते हैं, ये भी बोल रहे हैं कि इनको मारना पाप है, और कहते हैं पापम एवाश्रयेत अस्मान आतताईन, कि ये आतताई हैं, परंतु जो आतताई होते हैं उनको मारने में बिल्कुल पाप नहीं। ये शास्त्र के अनुसार है प्रकार के आतताई हैं जिनको मारने में, अब यहां पर आप ये मत समझना कि ये सब पढ़ने के बाद अब जो कुछ हमारे साथ किसी ने ऐसा कुछ किया हो तो चलो अब मुझे तो कोर्ट मत करना, क्योंकि हम क्या सुने हैं, देश काल पात्र वस्तु स्थिति के अनुसार अब इसे अनुवादित करना है। जो विष देने वाला व्यक्ति है वो एक आतताई कहलाया गया है, घर में अग्नि लगाने वाला, अर्थात ये नहीं खाने पकाने के लिए जो अग्नि जलाई जाती है वो नहीं, घर को अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये छह प्रकार के आतिताई शास्त्रों में बताए गए। तो इनको यदि कोई जान से मारता है, देश काल पात्र स्थिति वस्तु के अनुसार, तो बिल्कुल पाप नहीं लगता। अब यदि हम दुर्योधन को लें, एक व्यक्ति, एक दुर्योधन को लें, अब इसमें कहा गया कि यदि कोई एक भी प्रकार का आतताई हो इसमें से, यदि किसने बाकी पांच नहीं किए, केवल एक किया, विष दिया, जहर दिया, वो एलिजिबल हो गया मरने के, योग्य हो गया मरने के, कोई एक भी उसने इस प्रकार का आतताई का कर्म किया तो वो मरने योग्य। अब दुर्योधन को यदि लें तो महाभारत में दुर्योधन ने छों के छों किए, देखो ऐसा आतताई है कि छक्का मारा उसने, बचपन में गंगा के तट पर जल क्रीड़ा करने का आयोजन दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज को कहता है चलो जल क्रीड़ा करने चलते हैं, अपने भाइयों को बुलाओ। तो वहां पर पिकनिक, जल क्रीड़ा करने के बहाने वो अच्छा रसोई वहां पर बनवाता है और फिर भीम को विष, और फिर भीम वहां पर, हालांकि भीम को कुछ होता नहीं, विष वगैरह जो भी दिया वो तो थक के सो जाते हैं, तो इसे लगता है कि हो गया काम, मर गया भीम, तो गंगा में फेंक दिया। तो हम सब ये कथा महाभारत की जानते हैं। भीमसेन फिर और 10,000 हाथियों के बल को लेकर बाहर आते हैं। तो बचपन में ये आतताई का पाप कर्म दुर्योधन ने किया, विष दिया उन्हें, अग्नि वारणाव्रत लाक्षाग्रह पुरोचन को कहा कि लकड़ी और इसका मोम का बना हुआ महल इनके लिए बनाओ। सोचिए मोम का महल, आज भी कोई इतना दिखता नहीं, कोई मोम के महल में रह रहा है। केवल एक ही उद्देश्य उसका, इनको अग्नि में, वो भी घर में, पूरा घर को जलाकर मार दो उसके अंदर, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। जब अज्ञातवास अपने 12 वर्ष के वनवास में ये लोग गए तो दुर्योधन वहां पर भी नहीं छोड़ा, तो दुर्योधन ने वो वहां पर भी कैसे, तो उसे हो रहा था कि मैं उन्हें वहीं पे वन में ही मार दूं, तो वो सेना को लेकर गया वन में इस उद्देश्य से कि अभी इतना समय हो गया, क्या खाने पीने उन्हें मिलता होगा, तो सब एकदम ऐसे हो गए होंगे, तो कुछ खाने पीने तो वहां पर मिला नहीं होगा इनको, और इनके पास तो कुछ सेना नहीं, केवल ये 5 लोग हैं, तो आराम से इन्हें मेरी सेना और मैं मार देंगे। वहां पर गया तो चित्रसेन नामक जो गंधर्व, उसके क्षेत्र में घुस गया दुर्योधन, तो इस गंधर्व ने दुर्योधन को पकड़कर वो ले जा रहा था, और दुर्योधन उल्टा इसी के ऊपर पासा पलटा हुआ, तो वो अर्जुन जिसे कमजोर समझते हुए बिना किसी सेना के मारने आया, उस अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज द्वारा भेजा गया दुर्योधन की रक्षा की, तो अपने हथियार लेकर मारने वो वहां पर पहुंचा था इनको निहत्ते। धन लूटने वाला जब उसने राजसी यज्ञ में देखा कि युधिष्ठिर महाराज का ऐसा ऐश्वर्य, और केवल उस महल को नहीं देखा था दुर्योधन ने, बल्कि उस महल के साथ साथ जितने सारे राजा आए थे इतना धन लेकर आ रहे थे, तो देखा इतना सारा धन और भी मिल रहा है, तो उस सारे धन को लूटने के लिए फिर मामा शकुनी ने किया क्या, ये सब ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा चौसर। और शकुनी जानता था कि ये युधिष्ठिर और ये सारे जो पांडव हैं, ये खेलने में, इस चौसर में इतने निपुण नहीं है, वास्तविक रूप में कपट में निपुण नहीं है, जो शकुनी कपट में निपुण था वो ऐसे कपट में निपुण नहीं थे। तो फिर धन सारा लूट लिया, यहां तक कि उनके सारे अंग वस्त्र लूट लिए ये दुर्योधन, देखो एक एक करके डिग्री हासिल कर रहा था वो, दूसरे की भूमि हड़प लेना। अब 12 वर्ष और 13 वर्ष के सब कुछ पूरे वनवास के पश्चात क्या निर्धारित हुआ था कि फिर बंटवारा होगा और इन्हें भी राज्य मिलेगा, या युधिष्ठिर महाराज को मिलेगा। तो भगवान गए कहे कि ठीक है दुर्योधन तू रख ले सारा, पांच गांव दे दे खाली। दुर्योधन कहता है सुई की नोक के जितनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। ये देखो तो मुकर गया वो, हड़प लिया। और फिर पराय स्त्री का आपका अपहरण, द्रौपदी, द्रौपदी को जब दुशासन घसीटते हुए, कल्पना कीजिए द्रौपदी जैसी सती स्त्री को वो बालों से घसीटते हुए इन सब के सामने ले आ रहा है दुशासन, तो द्रौपदी राजी हो गई कि ठीक है मैं दासी बनकर रहती हूं परंतु इस प्रकार से मेरा अपमान मत करो इन सब के सामने। और द्रौपदी इनकी आंखों में भी नहीं देख रही थी, इतनी सती स्त्री थी, और इन सब के सामने निर्वस्त्र करने का आदेश। और कर्ण, कर्ण ने अपनी उसी जिह्वा से कहा कि ये एक वैश्या है इसलिए इसके शरीर पे वस्त्र शोभा नहीं देते। तो जब कोई पूछता है कि कर्ण को भगवान ने ऐसे क्यों मारा, तो भगवान कर्ण को यही याद दिला रहे थे। याद है तेरे वो शब्द, तू कौन से धर्म का पालन कर रहा था उस समय, कौन से धार्मिक वचन बोल रहा था कि मैं तुझे धर्म के अनुसार मारूं, तू लायक नहीं है धर्म के अनुसार मरने के, इसीलिए तुझे निहत्ता जब तू नीचे अपने रथ के खड़ा है तभी तू मरे, यही इसके ही लायक है। तो इस प्रकार का कार्य, आतताई का कार्य इन्होंने किया। और यहां पर अर्जुन ये सबको याद करते हुए बोल रहे हैं कि हां ये आतताई हैं फिर भी पापम एव आश्रयेत। तो सोचिए अर्जुन, हम केवल इतना सुने कि द्रौपदी के साथ कर्ण और दुशासन इन्होंने क्या किया, केवल इतना सुनने से हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि कर्ण सामने आ जाए तो, या वो दुशासन दुर्योधन सामने आ जाए। तो यहां पर देखिए सामने हैं अर्जुन के ये सब, परंतु फिर भी अर्जुन का मनोभाव क्या है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में गुणगान करते हैं कि ये है राज ऋषि के लक्षण, कि इतना होने के बावजूद अर्जुन क्षमा करने के लिए राजी। तो ध्यान में रखिए कि यह शास्त्र के अनुसार इन्हें आतताई बताया गया है, परंतु अब आप अपने अपने जीवन में जाकर ये मत देखते रहना कि कौन कौन इस श्रेणी में है मेरे जीवन में। तो कई लोग आजकल पिक्चरें देख के बहुत प्रेरणा लेते हैं कि पिक्चर में दिखाया कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा हुआ तो उसने कैसे मारा उसे, तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं अब रिवेंज। और आज तो शास्त्र में भी बता दिया बुधवार के कार्यक्रम में, तो मैं प्रेरणा अब शास्त्र से लूंगा, शास्त्र ही वेद वाक्य है और ये भगवत प्रणीतम भगवान ने कहा है, इसलिए जो भी आतताई जो मेरे घर में आग लगा रहा, कैसी आग, झगड़ा लगाया जो मेरे घर में, जो आग लगाया उसमें आतताई है, तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, या मेरा धन लूट लिया, कोई 10-5 रुपया लूट लिया होगा किसी के पॉकेट से, आतताई उधर ही खत्म करो इसे, या भूमि तो बहुत लोग हड़प लेते हैं। यदि ये सब भगवान यदि हमें आतताई की श्रेणी में डालें तो हम सब किए क्या है, सब कुछ ये भगवान की भूमि भगवान का धन सब कुछ हड़पे बैठे हैं यहाँ पे और अपना नाम लिख दिया है, ये जमीन मेरे नाम पे। अच्छा माधव ये भगवान को पुकारा अर्जुन ने, माधव शब्द की व्याख्या हमने पहले भी की है, याद है लक्ष्मीपति, भगवान को लक्ष्मीपति कहा है, तो माधव और लक्ष्मीपति में कोई अंतर नहीं, मां लक्ष्मी देवी को उल्लेख किया है और धव का अर्थ है जो उनके पति, लक्ष्मी के पति माधव। तो अब भागवत के 8वें स्कंद में जब लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, तो वहां पर लक्ष्मी देवी वरमाला लिए अब ढूंढ रही है कि कौन है वो जिसे ये वरमाला जो पहनने योग्य है। तो इसमें अब बताया गया है कि भगवान को लक्ष्मीपति, केवल लक्ष्मी जी भगवान को चुनी, बाकी सब, यहां तक कि शिवजी इत्यादि जितने सारे थे सबको रिजेक्ट कर दिया, केवल भगवान श्री विष्णु नारायण को ही चुना उन्होंने। तो क्यों चुना? तो ये सारे गुण देखे, वास्तविक तपस्या जिसमें है वो है लक्ष्मी के पति, वास्तविक ज्ञान जिसमें हो वो लक्ष्मी के पति, ऐश्वर्य, महानता, धर्म और बल। तो लक्ष्मी देवी देख रही हैं हाथ में वरमाला लिए कि किसी तपस्या है परंतु पूरा ऐश्वर्य नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। किसी में ज्ञान है तो महानता नहीं है, किसी में महानता है तो धर्म नहीं है, किसी में धर्म है तो बल नहीं है। अब इसके निष्कर्ष पे वो कैसे आई कि केवल भगवान श्री विष्णु में ये सारे गुण पाए गए हैं जिसके वजह से वो मेरे पति बनने योग्य हैं। सबसे पहले बताया गया है कि व्यक्ति की जो वास्तविक तपस्या है वो तपस्या व्यक्ति की खत्म होगी क्रोध के वजह से, कि व्यक्ति के अंदर तपोबल होगा परंतु उसके साथ साथ यदि क्रोध है तो सारा जो तपोबल है वो ऐसे क्षीण हो जाता है जैसे किसी मटके में जल है परंतु नीचे छिद्र। उदाहरण किसका है? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि ऐसी तपस्या में लगे कि गर्मी के मौसम में अग्नि चारों तरफ, और ऐसी साधारण सी गर्मी नहीं, यहां पर लू चलती हुई ऐसी गर्मी, रेगिस्तान की गर्मी में ऐसा नहीं एसी लगाया, हीटर लगाया, और वो भी ऐसा हीटर अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या, और सर्दी के मौसम में बर्फ में, उस समय बर्फ के पानी में तपस्या। जब मेनका आई तो विश्वामित्र मुनि मेनका के सौंदर्य में पागल हुए और मेनका से विवाह कर लिया। लेकिन उसके पश्चात अब उन्होंने अपनी गलती मान ली कि मैंने अपना सारा, मैं अपनी तपस्या छोड़ दिया, इतना मेरे अंदर तपोबल था। तो फिर गए तपस्या करने, मेनका को छोड़ दिया, तपस्या करने गए, और अब निश्चय किया कि अब मेनका या मेनका की नानी कोई भी आ जाए, अगर मेनका की नानी होती तो। तो अब तपस्या में लगे विश्वामित्र मुनि, तो इंद्र एक नए पीस को भेजते हैं, रंभा। अब रंभा को देखते ही विश्वामित्र मुनि समझ गए कि ये किस लिए आई है, तो पत्थर बन जाओ उधर ही। तो फिर उनका जो तपोबल है वो मटके से नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि क्रोध किया, पहले काम के वशीभूत फिर क्रोध के वशीभूत। परंतु इसके विपरीत हम देखते हैं नर नारायण ऋषि जो तपस्या में लगे थे और इंद्रदेव कामदेव को भेजे, ये मेनका रंभा ये तो सब केवल उनके गोदाम के कुछ सैंपल पीस थे कामदेव के, यहां व्यक्तिगत रूप से कामदेव गए नर नारायण ऋषि। इंद्रदेव जान गए कि ये नर नारायण ऋषि हैं, कौन? अर्जुन और कृष्ण हैं। तो इन्हें भ्रमित करने के लिए कोई साधारण अप्सरा काम नहीं आएगी, तो स्वयं कामदेव अपने अपना पर्सनल पार्टी लेके गए। तो नर नारायण ऋषि वहां पर, हालांकि उनकी तपस्या भंग की, परंतु नर नारायण ऋषि वो हंसने लगे कामदेव को देखते हुए, और बिल्कुल भी काम वासना के तो वशीभूत हुए ही नहीं, क्रोध के भी वशीभूत नहीं हुए। वो हंसने लगे कामदेव को देखने के लिए कि कामदेव तुम इन सब को लाए हो मुझे भ्रमित करने के लिए। भगवान नारायण बोलते हैं ये सब जो है ना, ये मैं यदि एक अप्सरा पैदा करकर तुम्हें दूं तो उनके सामने ये सब चुचुंदरी दिखती है, ऐसा श्लोक तो नहीं है परंतु उसी लाइट में उन्होंने कहा। तो नारायण वो अब कामदेव और इंद्रदेव को कहते हैं, कामदेव से कहते हैं, इंद्रदेव तो वहां पर सामने नहीं आए, वो जान गए कि सामने आना अब दुष्कर होगा बहुत। तो कामदेव अपनी जंघा से, उरु से उन्होंने एक अप्सरा पैदा की नारायण ऋषि ने, और उसका नाम हुआ उर्वशी, जो उरु से पैदा हुई उर्वशी, इसलिए इस्कॉन में इसे भी उर्वशी कहते हैं। उरु के जो ऊपर लैपटॉप, तो एक बार मुझे एक भक्त बोले कि आज उर्वशी को नहीं लाए, बोले क्या बोले क्या बोल रहे हो, बोले लैपटॉप को नहीं लाए। तो अब यहां पर नारायण वो उर्वशी को पैदा किए और कामदेव को कहे कि तुम्हारा जो ये अप्सराओं का जो एकदम एलीट अप्सराओं का जो ग्रुप है उसमें इसको जाके इंद्रदेव को मेरे तरफ से एक भेंट, इंद्रदेव को एक भेंट दे देना, बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से। तो इंद्रदेव पहले तो डरे हुए, तो बहुत खुश हुए और उर्वशी मिली। तो यहां पर भगवान नारायण, उनकी तपस्या को वास्तविक तपस्या कही गई है, क्योंकि बिल्कुल क्रोध नहीं, क्योंकि जो बहुत तपस्या करते हैं वो अग्नि के वजह से, तपोबल की अग्नि के वजह से अंदर बहुत गर्मी रहती, तो सांप की तरफ फुफकारते रहते हैं, श्राप दे देते हैं, तुरंत कमंडलू में जल तैयार रहता है श्राप देने के लिए, दुर्वास मुनि इत्यादि। बहुत तपस्या, तपोबल बहुत है परंतु वास्तविक तपस्या नहीं, क्योंकि क्रोध उसके साथ इतना है। तो लक्ष्मी देवी ने देखा कि क्रोध के वजह से तपस्या भंग होती है। अब किसी में तपस्या हो और क्रोध भी ना हो, परंतु ज्ञान हो, और परंतु ज्ञान नष्ट होता है आसक्ति के कारण। और हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपियों के साथ रासलीला में, उन्होंने गोपियों का त्याग कर दिया। अब कहा गया है कि जितने सारी अप्सराएं हैं वो सब, उनका जो सौंदर्य है, उनका ऐश्वर्य फीका है लक्ष्मी देवी के सामने, और लक्ष्मी देवी सहस्त्र लक्ष्मियों को यदि लें तो गोपियों के सामने उनका सौंदर्य फीका। इन गोपियों के साथ विहार करते हुए भगवान इनका भी परित्याग कर दिए। तो इस रासलीला में हम देखते हैं कि भगवान बिल्कुल निरासक्त हैं, इसलिए वास्तविक ज्ञान केवल उसी व्यक्ति में आ सकता है जो कि निरासक्त हो। ऐश्वर्य, जब कोई व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है तो उसका जितना भी ऐश्वर्य है वो जाता रहता है। अब इस भौतिक संसार में हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यशाली, इतना पैसा धन दौलत, परंतु वो सब धन दौलत पैसा आया कहां से? ये सब दूसरों पर तो आश्रित, दूसरे का, किसी का धन इस भौतिक संसार में ये धन है क्या? यहां से वहां ट्रांसफर होता है खाली, कि मेरे जेब में 100 रुपया है तो मैंने किसी को दिया, कुछ खरीदा, तो अब उसके जेब में वो 100 रुपया, अब वो और कुछ खरीदे तो तीसरे के जेब में 100 रुपया, तो वो 100 रुपया खाली घूमता रहता है। कोई वास्तविक रूप में कोई पैदा नहीं किया है वो 100 रुपया, हम सब आश्रित हैं। जैसे कि ये श्रील प्रभुपाद कथा बताया करते थे कि एक व्यक्ति, वो सबसे महान व्यक्ति की सेवा करना चाहता था, तो उसने अपने जमींदार से शुरू किया, गांव के जमींदार, देखा कि वो जमींदार भी जाता है उस शहर के मंत्री के पास, तो मंत्री के पास गया, मंत्री भी राजा की सेवा में है, तो राजा की सेवा करने लगा, तो राजा को देखा कि सुबह सुबह अपने पूजा रूम में जाकर वो हाथ जोड़कर किसी से प्रार्थना करता है, तो पूछा भाई तुम तुम भी सबसे महान नहीं हो क्या? तो राजा ने कहा, अरे भगवान सबसे महान है, मैं भिगमंग सामने। तो यहां पर जो ऐश्वर्य है वो सारा ऐश्वर्य सामने आ जाता है यदि हम ये देख लें कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति या वस्तु या दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होता है। परंतु भगवान ये किसी पर आश्रित नहीं है। जैसे मुझे एक क्रिश्चियन धर्म की कथा भेजी किसी ने कि क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ये सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई वो भगवान ने मट्टी से की। जो एडम और ई वो मट्टी से पैदा हुए और पूरी मनुष्य जाति फिर मट्टी से, और सारे जो तत्व हैं ये पूरी पृथ्वी सारी सृष्टि मट्टी से पैदा हुई। तो एक व्यक्ति वो भगवान को चैलेंज करता है कि अरे तो मैं भी तो मट्टी से पैदा कर सकता हूं, ये क्या कि मट्टी से पैदा कर दिया तुम भगवान बन गए? तो भगवान ने कहा ठीक है तुम करो पैदा। तो उसने तुरंत मट्टी ली और वो अपना पैदा करना शुरू किया। तो भगवान ने कहा अरे नहीं रुको रुको, खुद की मट्टी लाओ, तुम मेरी मट्टी इस्तेमाल कर उत्पत्ति कर भगवान बनना चाहते हो, ये जानो कि ये मट्टी भी मैंने ही पैदा की। सबसे पहले अपनी मट्टी पैदा करो और फिर इस सृष्टि का निर्माण करो। तो हम जो भी कुछ निर्माण करते हैं, घर इमारत या शहर, जो भी कुछ ये सब निर्माण करते हैं, ये यहीं से सब ले रहे हैं, तो आश्रित हैं। परंतु भगवान वास्तविक ऐश्वर्यशाली हैं, परंतु इसलिए क्योंकि किसी पर आश्रित नहीं। वास्तविक महानता भगवान की इसलिए है क्योंकि उनके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं। और इसका उदाहरण है कि जब भगवान हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने भगवान को न्योता दिया 56 भोग खाने का। तो भगवान दुर्योधन का 56 भोग को नहीं लिए, परंतु विदुर के घर रूखा साग खाने का। दुर्योधन का भोग न खायो, रुको साग विदुर घर खायो। तो भगवान ने यहां पर दिखा दिया, दुर्योधन को यह कहा भगवान ने कि देखो दुर्योधन, व्यक्ति किसी के घर खाने जाता है दो कारणों के वजह से। एक तो भूखा होता है तब जाता है, और दूसरा उस व्यक्ति से प्रेम हो तो उस व्यक्ति के घर खाने जाता है। न तो मैं भूखा हूं न तुमसे प्रेम है मुझे, तो मैं क्यों आऊं? तो चाहे तुम 56 भोग बनाओ या 156 बनाओ, तो भगवान के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए अपनी महानता बनाए रखते हैं। धर्म का नाश होता है जब व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती, इसलिए भगवान ही वास्तविक रूप में धार्मिक हैं क्योंकि सबके प्रति दया रखते हैं। सुरदम सर्वभूतानाम भगवद गीता में भगवान ने कह दिया कि भगवान यहां तक कि सुअर की योनि, कुत्ते की योनि, कीट पतंग इन सब की योनि में परमात्मा स्वरूप जीव के साथ जाते हैं। अब देखिए वो सुअर कहां कहां गटरों में घूमता है, भगवान परमात्मा के रूप में उस सुअर के साथ भी जा रहे हैं उसका उद्धार करने के लिए कि कभी तो ये जीव मेरे तरफ उन्मुख होगा। यह है दया भगवान की। और वास्तविक बल क्षीण हो जाता है काल के प्रभाव से। अब देखिए भगवान गीता जब सुना रहे थे अर्जुन को तो भगवान की उम्र क्या थी? 125 वर्ष। सोचिए 125 वर्ष का व्यक्ति क्या बोल सकता है, क्या सुन सकता है, क्या रथ हांक सकता है? परंतु भगवान को हम देखते हैं भगवत गीता के वो कवर पेज पर कि भगवान वैसे ही तेजस्वी नवनवायमान, क्योंकि भगवान काल का प्रभाव तो भगवान के ऊपर पड़ता नहीं, उल्टे भगवान स्वयं काल के रूप में हम सब के ऊपर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। मृत्यु सर्व हरस चाहम कालोस्मी लोक क्षिद्ध प्रवृद्धो। तो इसीलिए भगवान को यहां पर माधव कहा गया है ये सारे गुणों के वजह से। और अर्जुन कहते हैं कि आप इतने सर्वगुण संपन्न हो तो मुझे ऐसे घृणित कार्य में क्यों लगा रहे हो जिसके वजह से मेरे दुर्गुण बढ़ते रहेंगे। तो हे माधव आप कृपया मुझे ऐसे कार्य में लगाओ जिसमें मुझे सुख मिले, सुखी नह। तो इसलिए हम यदि इस श्लोक के इन सारे शब्दों को गौर कर कर देखें तो अर्जुन कहते हैं कि ये पाप है। तो मानो कोई अर्जुन को कहे परंतु ये तो आतताई हैं, तो अर्जुन कहे नहीं लेकिन मेरे बंधु और स्वजन हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, आतताई होंगे। तो अपने ही बंधु स्वजन को मारने से क्या मुझे सुख मिलेगा? वो पूछते हैं माधव से जो कि गुण संपन्न है। और माधव फिर ये सब बातें सुनकर आगे अब क्या बोलने वाले हैं, अभी तक शुरू नहीं किए करेंगे बोलना। ये जो पाप की व्याख्या है अर्जुन अब अगले श्लोक में भी बताएंगे कि इस पाप के वजह से और आगे क्या क्या होने की संभावना है, और इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सेशन में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो ध्यान रखिए वो छह प्रकार की आतताई। वो केवल देश काल पात्र के अनुसार है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपने बताया कि जो व्यक्ति अविद्या से पाप कर्म करता है तो उसको फल भोगना पड़ता है, परंतु हम ये देखते हैं कि जैसे कि विदुर जब धर्म धर्मात्मा थे तो उन्होंने एक ऋषि को दंड दिया, तो वो ऋषि ने कि एक जीव को शूल पर चढ़ाया था इसीलिए उसको दंड मिला है। तो इसका मतलब हम कैसे समझे कि या तो हम देखते हैं कि हम बचपन से बहुत सारे अविद्या से पाप कम कर्म होते हैं, क्या हमें वो पाप के कर्म फल हमें अभी मिलते हैं?
हाँ, अविद्या अनजाने में, जैसे ये सब बताया गया है ना कि खाना बनाते समय जानबूझ के तो पाप नहीं कर रहा, खाना बनाने के लिए अग्नि जलाई है, साफ सफाई कर रहा है, या सांस लेते समय, ये सब छोड़ दीजिए, सांस लेते समय कितने बैक्टीरिया को हम मार रहे हैं, तो ये सब अनजाने में अविद्या में ये सब पाप हो रहे हैं। तो इस सब का परिणाम तो मिलना है, परंतु उसके साथ साथ उन परिणामों से मुक्त होने की भी विधि बताई गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। ये जो सर्व पाप है भगवान कहे हैं, ये सब जितने जानबूझ के किए, अनजाने में किए, जितने सारे बीज फलोन्मुख अप्रारब्ध प्रारब्ध, ये सब से मुक्ति भगवान दिलाएंगे जब व्यक्ति पूर्ण शरणागत भगवान के होता है। अब देखिए, व्यक्ति हो सकता है कि बहुत पैसा वाला हो परंतु स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो कोई ना कोई अनजाने में कोई पाप हुआ होगा जिसकी वजह से उसे यह दंड मिल रहा है। कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अब मैं उस दिन बंबई में एक प्रोग्राम से आ रहा था तो मैंने देखा बंबई शहर में लोग ऐसी गंदगी में, इतनी आवाज में, इतना बड़ा वो ये जो बुलडोजर होता है वो जेसीबी का, इतना बड़ा रात को चल रहा है, आवाज हो रही है, और कई फुटपाथ पे खर्राटे भरते हुए सुख की नींद सो रहे। तो अब देखिए, इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा ऐसी नींद इस स्थिति में भी ले रहे हैं, और उसी एरिया में, चौपाटी के एरिया में आप जाओ बहुत धनवान व्यक्ति के किसी फ्लैट में बंगले पर, वो करवट बदल रहा है, नींद नहीं आ रही, फिर नींद की गोली लेनी पड़ती है। और ये तो पैसा है, परंतु वो पैसा किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? नींद की गोली खरीदने के लिए। इसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन नींद बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन कोई पलंग नहीं सोने के लिए उतना अच्छा। तो ये सब जो भी जाने अनजाने में जितने सारे पाप, तो कम ज्यादा मात्रा में ये तकलीफें होती रहती है। सर दर्द होते रहना, पेट दर्द होते रहना, घुटने में दर्द होते रहना, या जो कुछ शारीरिक तकलीफें, या दूसरों से अधि भौतिक तकलीफ या अधि दैविक तकलीफ, ये सब जो भी पाप है उससे होता रहे। ये सबसे छुटकारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकमेव उपाय हरि नाम, नात परतरोपाय, ये भी कहा गया है।